अब जो है आयत नंबर 4 सूरत तलाक में एक और अहम नुक्ता बयान किया जा रहा है कि हालात के मुताबिक, औरतों के हालात के मुताबिक इद्दत की नौइयत मुख्तलिफ है, और तीन किस्म की औरतों की इद्दत जो है वो बयान की गई है। फरमाया वल्लाई, और वो औरतें जो, तो जैसे अल्लाती है ना, अल्लाती क्या है? वाहिद। और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है अल्लाती और वाहिद, मुजक्कर के लिए क्या आता है? अल्लाजी, और ये वाहिद है। तो मुजक्कर जो अल्लाजी है उसकी जमा क्या है? अल्लाजीना। तो अल्लाती जो है इसकी जमा क्या है? अल्लाती, और यहाँ पे जो है अल्लाई जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और वो औरतें जो यइसना, ना उम्मीद हो गई हो। यइसना का लफ्ज जो है ये या हमजा सीन, कत उर रिजा, कता के मानी क्या होते हैं? कट करना, काटना, और रिजा कहते हैं उम्मीद को, तो कत उर रिजा कहते हैं यास। तो मानी है मायूस होना, उम्मीद का टूट जाना, ना उम्मीद होना। वल्लाही यइसना, और वो औरतें जो मायूस हो चुकी हों, किससे मायूस हो चुकी हों? मिनल महीदी, हैज से। तो अब यहां पर जो है अब देखिए कि महीद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और महीद किसे कहते हैं? हा या द्वाद, इसका रूट वर्ड है, और हैज। और आपको ये भी पता है कि साथ जो है ये मीम आ गया है, और इसके महीद यानी वो जगह जहां से फिर हैज आ रहा है। तो अब ये कि उनका गोया कि हैज जो है ना वो खत्म हो चुका है। तो तुम में से वो औरतें जो हैज से मायूस हो चुकी हैं, इसको और क्या कहते हैं? हाँ, पीरियड्स का खत्म हो जाना, और एक खास मुद्दत आती है, हाँ मोनोपॉज, जिसमें ये कि खास मुद्दत आती है, जैसे बाज लोग 40 साल, 45, 50, इसके राउंड जो है वो लोगों का हैज आना खत्म हो जाता है। और बाज अवकात ये कि इररेगुलर हो जाता है, कभी 8 महीने नहीं आया, कभी 1 साल नहीं आया, फिर उसके बाद जरा सा आया, तो इसका ये मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो नंबर एक किस्म उन औरतों की है जो हैज से मायूस हो चुकी हैं। मिन निसाएकुम, तुम्हारी औरतों में से, तुम्हारी औरतों में से, तो इमरातुन वाहिद है, निसा जमा है, कि तुम्हारी औरतों में से जिनका हैज जो है वो खत्म हो चुका है, वो हैज के मामले में मायूस हो चुकी हैं। इनिर्तब तुम, अगर तुम लोगों को शक है, तो यहां पे जो शक की बात हो रही है तो ये किस चीज का शक है? गोया कि हैज के मामले का शक है, कि अब हैज जो है वो रेगुलर नहीं है, और इस बात में शक है कि तलाक जैसे अब दे दी है, तो औरत जो है वो अपनी इद्दत कैसे पूरी करे, क्योंकि इद्दत के तायुन में फिर शक हो जाएगा। तो अब कहते हैं कि जब ऐसी औरत का मसला सामने आया कि उनकी इद्दत के तायुन में शुबा हो जाए, ऐसा मसला सामने आए या आया, तो ये मसला कहते हैं कि पूछा गया था कि ऐसी औरत है जिसको तलाक दी जा चुकी है, और उसकी उसका हैज जो है वो खत्म हो चुका है, तो अब इद्दत के बारे में जो है वो तायुन नहीं हो रहा कि कितनी गिनती करें। तो उसकी जो है फिर अल्लाह ताला ने जो है वो मुद्दत जो है बताई कि फा इद्दत हुन्ना सलासतु अशहुर, तो तुम्हें मालूम हो कि फा इद्दत हुन्ना, कि उनकी इद्दत जो है उनकी गिनती जो है वो 3 महीने है। तो शहर महीने को कहते हैं, और अशुर उसकी जमा है, कि उनकी इद्दत की मुद्दत 3 महीने है। तो ये इद्दत उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन उसे तलाक दी गई थी, और 3 महीनों से मुराद जो है वो चांद के 3 महीने हैं। फिर इसके बाद दूसरी किस्म बताई जा रही है, वो कौन सी है? वल्लाई, और वो औरतें जो लम यहिद, जिन्हें अभी हैज आया ही नहीं। अब ये कौन सी औरतें हैं कि जिन्हें अभी हैज आया ही नहीं, तो वो औरतें जिनकी उम्र बहुत छोटी है, वो लड़कियां जो कम सिनी की वजह से जो है वो बालिग तो महसूस होती हैं, लेकिन जो है हैज नहीं अभी आया, और बाज औरतों को वैसे भी देर से हैज आता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कोई शाजो नादिर ऐसा वाकया भी पेश आता है कि किसी औरत को उम्र भर हैज ना आए, आए ही ना, तो ऐसी औरत को आयसा कहते हैं, आयसा नाउमीद औरत। और आयसा औरत की इद्दत फिर कितनी है, वही तलाक के 3 महीने, सलासता अशुर। तो ये जो सलासतु अशुर जो है ना, ये वो औरतें जो हैज से मायूस हो चुकी हैं उनके लिए भी है, और वो औरतें या लड़कियां जिनको हैज अभी आया ही नहीं है। तो इससे फिर मुफस्सरीन ये नुक्ता भी निकालते हैं कि इससे ये बात पता चलती है कि अगर ऐसी लड़की जिसको तलाक दे दी गई और उसको भी हैज भी आना शुरू नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब है कि कम उम्र लड़की जो है उसकी उसका भी निकाह हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो तीसरी किस्म कौन सी औरतों की है, वह उलातुल अहमाली। तो यहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उलात का, और मैंने आपको बताया था कि जैसे वाला, और वाला जो है उसके लिए जू भी आता है और उलू भी आता है, और उलू जैसे आता है उलू, तो उलात उलात भी इसी तरह आता है, और उलात मुअन्नस के लिए आता है, और उलू जो है आता तो मुजक्कर के लिए है, लेकिन बाज़ औक़ात उसमें जो है वो मुजक्कर मुअन्नस दोनों शामिल किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जू और उलू इस्म की तौसीफ बयान करने के लिए जरिए के तौर पर आता है। अब ये तारीफ बयान की जा रही है ना कि हैज आया और हैज नहीं आया, तो ये एक वस्फ है, तो यही बताया जा रहा है कि ऐसी औरतें जो कि अहमाल हमल वाली हैं, अहमाल इसका वाहिद है हमल और जमा है अहमाल, और इसी तरह जो उलात है इसके मतलब है वालियां साहिबात, और उलू की मोनस और ये जातों की जमा है, उलू जो है ना जैसे मुजक्कर है तो उलात उसकी मोनस है। फिर फरमाया और हमल वाली औरतें अजल होना उनकी अजल है, उनकी इद्दत है। तो हमल वाली जो औरतें हैं हामिला औरतें, फिर उनकी इद्दत कितनी है, कहा गया कि अई अदाना हमला हुन्ना, यहां तक के वजा हो जाए उनका हमल। और आपको पता है हमल जो है ये इसके मानी होते हैं किसी चीज को उठा लेना, तो ये जो अहमाल है ना इसका वाहिद हमल है, इसका ये ऑपोजिट है यदाना, और इसका रूट है वो द्वाद ऐन, वदा का मतलब होता है नीचे रख देना, तो अई यदाना के वो रख दे नीचे या वो वदा हो जाए हमला हुन्न उनका हमल। अच्छा, अब आप देखें कि वो उनका हमल जो है वो नीचे आ जाए कि बच्चा पैदा हो जाए। अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चा जो है वो एक दिन बाद ही पैदा हो जाए, मर्द ने तलाक दे दी एक घंटे बाद ही पैदा हो जाए, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कामिल बच्चा पैदा होता है बहुत दिन ऊपर ले जाता है तो भी उतनी इद्दत है, खा उधर वो प्रेग्नेंट हुई और फौरन ही उसने तलाक दे दी, अब 8 महीने 9 महीने उस पूरी मुद्दत जो है वो उसको फिर इद्दत में रहना है। और बच्चा नाकिस पैदा हो या कामिल, एक दिन बाद एक घंटे बाद या फिर ये कि पूरी 9 माह की मुद्दत जो है या ऊपर वो दिन ले ले, तो सारी चीजें इसमें मुराद हैं। फिर साथ ही कहा वमन यत्तकिल्लाह, और जो डरे अल्लाह से, तकवा की बात आ गई, यजअल्लाहु मिन अम्रिही युसरा, पैदा करेगा अल्लाह, बना देगा अल्लाह उसके लिए, यानी यजअल्लाहु उसके लिए बना देगा, मिन अम्रिही अपने हुक्म से। तो अमर का लफ्ज जो है ये हुक्म के मानी में भी आता है और काम के मानी में भी आता है, तो बाद लोगों ने इसका तर्जमा ये किया है कि वो अपने हुक्म से बना देगा, और बाज लोगों ने इसका तर्जमा किया है कि उसके काम में बना देगा, कि अल्लाह जब हुक्म दे तो कोई भी मुश्किल चीज जो है वो आसान हो जाए। अब इद्दत का मरहला तो बड़ा मुश्किल है ना, तलाक मर्द ने दी है तो तलाक जो है तो नापसंदीदगी की हालत ना, तो इस मुश्किल मरहले को खा वो मर्द के लिए है या औरत के लिए, मन जो है ये दोनों के लिए आया है। जो भी तकवा से काम लेगा, जो अल्लाह से डरेगा, और तकवा जो है इसमें एहतियात का पहलू शामिल होता है। कैसी एहतियात? मसलन आपके पास जो है अगर गरम गरम जो है वो चाय का कप हो तो आप क्या करती हैं? आप उसको बड़ी एहतियात से पकड़कर चलती हैं। आप ड्राइंग रूम में लेके जा रही हैं चाय, मेहमान आए हैं बहुत से, आपने कपों में चाय डाली हुई है, आप ट्रे लेके जा रही हैं, तो आप क्या करती हैं? पूरी एहतियात के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, और एहतियात और बचाव दोनों चीजें शामिल होती हैं कि गिर ना जाएं। और फिर ये कि वो गिरेगा तो क्या है कि अपने ऊपर भी गिरेगा, जलेंगे भी और नुकसान अलग होगा, है ना। तो ये इसको एहतियात कहते हैं, आग से बचा जाता है, ये भी एहतियात है। गरम गरम इस्त्री है, हम इस्त्री से बचते हैं ना, अपने बच्चों को भी बचाते हैं। तो ये है तकवा के गुनाहों से भी इसी तरह बचना है, एहतियात भी करनी है, बचना भी है, और मकसद क्या है और उसकी बेस क्या है? अल्लाह का डर। तो जो भी तकवा इख्तियार करेगा, तो ये जो तलाक का मामला है ना, ऐसा नहीं है कि बस बात कुछ भी ना हो तो छोटी छोटी बातों पर जो है वो आपस में लड़ा झगड़ा जाए, तलाक शौहर बाज मर्दों की आदत होती है कि तुझे तलाक चाहिए, अच्छा तुझे फारिग कर दूं, तू फारिग होना चाहती है। और कभी औरतें भी ऐसे बातें कहती हैं कि हम रहना नहीं चाहते, फिर मुझे फारिग कर दें। तो छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मसाइल पे जो है वो ये तलाक के हालात पैदा करना या उसका मुतालबा करना, ये तकवा के खिलाफ है। डरे अल्लाह ताला से, और डरना कैसे है? दिल के अंदर भी डर हो और जाहिरी तौर पर भी, गोया के जाहरन और बातिनन दोनों तरह से, तब अल्लाह ताला मामलात में आसानी करेंगे। फिर वो जो मुश्किल होती है ना, उसी को अल्लाह आसानी में बदल देता है। इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये जो बजाहिर तो ये मामला बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह इसको अपने हुक्म से इस मामले को आसान कर देगा। ज़ालिका अम्रुल्लाह, ये है हुक्म अल्लाह का। पहले भी अमर आया और यहां पे अम्रुल्लाह ऑर्डर का, ऑर्डर के लिए आता है ना हुक्म, ये है हुक्म अल्लाह का। अंजलहु, नाजिल किया इसको, इलैकुम तुम्हारी तरफ। तो अल्लाह ताला ने ये जो कुछ भी अभी ऊपर हमने पढ़ा है, तलाक इद्दत के जो मसाइल और मर्द और औरत की जो जिम्मेदारी, और या यहाँ पे खास तौर पे हमने तीन किस्म की औरतों का जिक्र पढ़ा है इद्दत के मामले में, और एक वो जो बूढ़ी हो चुकी है और हैज नहीं आ रहे, और दूसरी वो है जो कि कम उम्री की वजह से उसको हैज नहीं आ रहे, और तीसरी वो है जो कि हमल वाली औरतें हैं। तो ये इरेगुलर हालत है ना, कि जब हैज आ ही नहीं रहा तो इद्दत का तायुन कैसे हो, तो इसके लिए तीन माह की मुद्दत का तायुन कर दिया गया। फिर फरमाया वमैयत तकिल्लाह, और जो डरेगा अल्लाह से। अब फिर तकवा का जिक्र है। एक बात याद रखिएगा कि मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें, लड़ाइयां, झगड़े, इसमें लोग कहते हैं दुआ बता दें, कोई तरीका बता दें, कोई किसी को बता दें कि हम उससे जाकर मिल लें। दुआएं भी तब काम करती हैं जब दवा की जाए, और दवा क्या है? तकवा, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ। अल्लाह का डर जो है वो बड़े बड़े लोग जो है ना उनके अंदर कब कभी पैदा कर देता है। वो झुक जाते हैं, वो रुजू करते हैं, वो अपने आप को खत्म कर देते हैं, अनानियत खत्म कर देते हैं। तो जितने झगड़े, लड़ाइयां, मसाइल हैं, उन सब का इलाज तकवा है। तो इसलिए यहां पे तकवा का जिक्र हो रहा है। वमन यत्तकिल्लाह, तो ये नहीं कि औरत डरे और मर्द ना डरे, मर्द भी डरे, औरत भी डरे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करे तमाम मामलात में। और यहां पे अब तक जितनी बातों का जिक्र हुआ है कि तलाक तलाक दो तो इद्दत के लिए दो, फिर इसके अलावा और बात क्या कही गई कि फिर उसको गिनो, खूब खूब उसका शुमार करो, फिर ना तुम औरतों को निकालो ना औरतें खुद से निकल जाएं। फिर उसके बाद और क्या था कि जब उनकी इद्दत जो है वो खत्म होने के करीब आए तो फिर उनको अच्छे तरीके से या तो रोक दो या फिर ये कि उनको जो है वो रुखसत कर दो। और गवाहियां बहुत अहम है, गवाह, गवाहियां। तो ये सारी बातें जो हैं वो कैसे हल हो सकती हैं, अल्लाह पर ईमान, आखरत पर ईमान और फिर तकवा। और जिसके अंदर ये सिफात होंगी अल्लाह उनको क्या समरा देगा, जो कफिर अन हुसे ये आते ही वयुजिम लहू अजरा, युकफिर अनहु, दूर कर देगा इससे। और आप देखें कि एक तो फा पर शद है, युकफिर, एक होता है ना किसी चीज को मिटा देना और साथ अन की प्रेपोजिशन आ जाए, अन का सिला आ गया तो क्या है कि बिल्कुल ही मिटा देगा, बिल्कुल ही दूर कर देगा, दूर कर देगा अनहु इससे सही आते ही इसकी बुराइयां। क्योंकि मन आया तो इसलिए फिर हु की जमीर आ गई। वैसे मर्द औरत जो भी तकवा इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसकी बुराइयां उसे दूर कर देगा। कितना नफे का सौदा है, कितना खूबसूरत सौदा है, कितनी बेहतरीन आयतें हैं दिलों में उतर जाने वाली, मसाइल को हल करने वाली, कि इद्दत के अलावा जो है जितने भी मसाइल हैं, जैसे औरतों के साथ हुस्न सलूक किया जाए, जो कुछ भी किया जाए, तो उसमें क्या है कि जब तकवा होगा तो अल्लाह सारी बुराइयां जो है ना उनको खत्म कर देगा। सु रूट है, सैयातुन वाहिद है, सैयात बुराइयां हैं, एक बुराई नहीं सारी बुराइयां। सैयात ही उसकी, किसकी, मर्द की के औरत की, दोनों की नहीं, दोनों में से वो जो मुत्तकी है, शाबाश। सही आते ही की जमीर आई है मुत्तकी के लिए, दोनों में से जिसने तकवा इख्तियार किया है तो अल्लाह उसकी बुराइयां दूर कर देगा। दूसरा इनाम क्या देगा, वह यो लहू अजरा, और देगा उसको, लहू किसको, किसको, उस मुत्तकी को, उस तकवा वाले को, अजरा अजर देगा। और अजर कितना देगा, योजिम, आयन जोए मीम से है, हड्डी को कहते हैं ना, तो हड्डी जैसे बड़े के मानी देती है ना, अजीम बड़े के लिए फिर आता है, तो बहुत बड़ा अजर देगा, थोड़ा अजर नहीं देगा, बड़ा करके देगा। फिर आयत नंबर 6 है और इसमें जो है बताया जा रहा है कि मर्द जो हैं वो औरतों के साथ हुस्न सलूक करें। कैसे उसने सलूक करें, अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकन्तुम, फरमाया कि अस्किनुहुन्ना, रखो इनको, तो किनको रखना है, औरतों को। और सकना जो है इसके मानी होते हैं एक मकाम से दूसरे मकाम पर ले जाकर आबाद कर देना। तो पहला मकाम औरतों का कौन सा था, मेका, तो दूसरा मकाम कौन सा है, ससुराल। तो आम तौर पे होता क्या है कि जब निकाह होता है तो औरत को, लड़की को एक घर से ले जाकर दूसरे घर में आबाद कर दिया जाता है। तो अब कहा जा रहा है कि अस्किनुहुन्ना, रखो इनको, आबाद करो इनको, मिन हैसु सकन्तुम, मिन हैसु, जिस जगह सकन्तुम तुम आबाद हो, जिस जगह तुम रहते हो। इसके मानी ये हैं कि अब ऐसा ना हो कि औरतों को जो है एक जगह से उठाकर जो है वो दूसरी जगह तो ले आए गए, यानी औरत को जो है मेके से ससुराल लाया गया, अब उसके बाद जब निकाह होने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, अब तलाक दे दी, अब इद्दत का जमाना है। अब इद्दत के जमाने में जो है कहा जा रहा है कि इद्दत के जमाने में भी औरत के साथ ऐसा सलूक न किया जाए कि मर्द कहीं और रह रहा हो और औरत को तंग करने के लिए जो है ना किसी नौकर के क्वार्टर में भेज दिया जाए या किसी गिराज में रख दिया जाए या उसको किसी तय खाने में या बेसमेंट में या कहीं कैद खाने में डाल दिया जाए। ये इद्दत के दिनों की बात हो रही है कि इद्दत के दिनों में औरतों को वहां रखो जहां तुम खुद रहते हो, और आप तो सबूर करेंगे फिर आम दिनों में जो है वो औरत को कहाँ रखना है, तो औरत को नहीं रखना है जहां मर्द खुद रहेगा। तो औरत का स्टेटस वही है जो कि मर्द का अपना स्टेटस है, ये नहीं कि औरतों के साथ नौकरों चाकरों वाला सलूक किया जाए, गुलामों वाला सलूक किया जाए। तो इस बात का निचोड़ यही है कि औरतों का मयार भी वही होना चाहिए जो कि मर्दों का शोहरों का अपना मयार है। अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकन्तुम, रखो इनको उस जगह पे जिस जगह सकन तुम रहते हो। मिम वुजदेकुम, अब वुजद जो है ये किसे कहते हैं, असल में वो जीन दाल वजदा होता है ना, तो वजदा मतलब होता है पाना, तो यहाँ पे वुजदी जो है ना ये इस में इस्तेमाल हुआ है, और वुजदी के मानी है कि वुसत। वुजदी का क्या मतलब है, वो चीज जो इंसान पा ले, जो उसके पास मौजूद हो। तो वुजदी कुम का मतलब है तुम्हारी ताकत के मुताबिक, तुम्हारी वुसत के मुताबिक। तो तुम औरतों को जो है उसी जगह पे रखो जैसी जगह तुम्हें मुयस्सर है, इसमें कोई कमी बेशी ना करना, किसी लिहाज से औरतों को तंग करने की तदबीर न करना। ऐसा ना हो कि तुम उसको बेसमेंट में रखो या गिराज में या किसी क्वार्टर में, खुद कोठी और बंगले में रहो, अच्छी जगह पे रहो, अपने खुद एसी में रहो और उसको गर्मी के अंदर भून डालो। अब इद्दत पहले ही है, दिल वैसे ही परेशान है, अब होगा क्या कि औरत मजबूर होकर सोचेगी कि अच्छा चलो मैं इस घर को छोड़ ही देती हूं ना। तो ऐसा न करना, वला तुदारूहुन्ना, और ना जरर पहुंचाओ इनको, ला तुदारूहुन्ना ना नुकसान पहुंचाओ इनको। तो ये जमा मुजक्कर जो है, जमा मुजक्कर नहीं बल्कि यहां पर जो सीगा इस्तेमाल किया है ला तुदारू, असल में ला तुदारूना, तो ला तुदारूना तो जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। तो ए मर्दों तुम औरतों को नुकसान ना पहुंचाना। हुन्ना कौन है, वो सारी औरतें जिनको तलाक दी हुई और इद्दत गुजार रही हैं। ले तो दैयकू, ताकि तुम उनको जो है वो तंग करो। ले तो दैयकू के क्या मानी है, दीक से है, दाद या काफ, और आपको ये बात भी पता होगी कि आमतौर पर यह लफ्ज जगह की तंगी के लिए आता है दीक, लेकिन दिल की तंगी के लिए भी इस्तेमाल होता है दीक, कल्ब, कल्ब की तंगी। तो उनको जो है तुम तंग ना करो, ले तो दइए कू, ताकि तुम तंग करो उनको, अलैहिन्ना उनको, कि तंग करने के लिए तुम उनको ना सताओ। तो ना जगह में उनको तंगी दो और ना ही जो है कोई ताने वगैरह दे के और नुकसान पहुंचाकर, तो किसी तरह से भी तुम औरतों को जो है ना तंग ना करो। तो गोया के वला तुदारू हुन्ना ले तो दइए कू अलैहिन, इसमें जो है इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि जो अल्लाह के अहकामात है ना जितने अब तक बयान हुए हैं, अगर तकवा इख्तियार न किया तो इसका ये मतलब है कि तुमने अल्लाह के अहकामात कबूल ही नहीं किए, इसीलिए तुम जो है वो औरतों को सता रहे हो। अपने पास तो औरतों को रखा हुआ है लेकिन ये कि उनको तंग कर रहे हो और उसकी तदबीरें जो है वो सोच रहे हो। इतनी खूबसूरत बात कह के, इतनी अच्छी बात कह के, फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत खास तौर पे जो हमल वाली औरतें हैं ना उनका जिक्र करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीछे इद्दत तो तीन किस्म की औरतों की बताई गई थी ना, तीन किस्म की औरतों की इद्दत, तो एक कम उम्र औरतें जिनको हैज नहीं आया, और एक जो यायसा है जो बड़ी उम्र में पहुंचकर हैज से उसका खत्म हो गया, तीसरी हामिला औरत। तो हामिला औरत का खास तौर पर क्यों जिक्र किया जा रहा है कि वाइन कुन उलाती हमलिन, कि अगर वो हों हमल वालियां, उलाती जो है इसके मानी क्या है, वालियां, तो उलू मुजक्कर है तो उलात इसका मुअन्नस है। तो अगर वो औरतें जो हैं वो हमल वालियां हैं, इद्दत गुजार रही हैं तुम्हारे पास, व अनफिकू पस खर्च करो इन पर, अनफिक ये ऑर्डर का सीगा है, तो खर्च करो इन पर, अलैहिन्ना इन पर, हत्ता यदाना यहां तक के वजा हो जाए, यहां तक के बच्चा पैदा हो जाए, हमलाहुन इनका हमल। तो अब ये जो बात के हमल वाली औरत का खास तौर पे यहाँ पे क्यों जिक्र किया गया, तो इसकी वजह ये है कि हामिला औरत जो है ना उसकी उसकी मुद्दत भी, और बाद बात ये कि जैसे उसकी जो हालत होती है वो ज्यादा अहम होती है, कि कभी दवाई की जरूरत है, कभी खुराक की जरूरत है, फिर डिलीवरी का खर्चा कितना ज्यादा होता है, फिर उसकी अपनी हालत भी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो हमल से होती है, कभी कुछ चीज खाने को दिल चाह रहा है या खाया ही नहीं जा रहा, तो उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं होती क्योंकि उसके जिस्म के अंदर एक और जिस्म जो है परवान चढ़ रहा होता है, एक जान के अंदर एक और जान होती है। तो यहां पर जो है खास तौर पर उनके बारे में ताकीद की कि उन पर उस वक्त तक खर्च करते रहना जब तक कि वो हमल से फारिग ना हो जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों पे भी खर्च नहीं करना, करना तो है ही इद्दत के दौरान सब पर, लेकिन हामला औरत जो है उसके ठहरने की मुद्दत भी ज्यादा हो सकती है। बाकी लोगों की इद्दत कितनी है? 3 माह। अब इसकी इद्दत तो 9 माह भी हो सकती है। बाकी लोगों का इतना खर्चा नहीं होगा, इसका खर्चा दोहरा होगा, इसके मसारिफ बढ़ सकते हैं। इसलिए चूंकि मुद्दत कयाम तवील हो सकती है और बाज हालात में खर्च की नौइयत ज्यादा बढ़ सकती है। एक आम डिलीवरी है, और अगर आप देखें कि अगर ऑपरेशन से हो तो अब तो हजारों की बात है, तो इनके ऊपर खुश दिली से खर्च करते रहना फाइन अर्दान अलकुम। अब बच्चा पैदा हो चुका है, अब वजह हमल के बाद जो है ना अब रजात का मसला सामने आ गया, तो अब वो जो बच्चा है ना उसको जो दूध पिलाना है अब उसके अहकामात बताए जा रहे हैं। अब दूसरा मरला है, पहला मरला क्या था इद्दत के दौरान? वजाए हमल। दूसरा मरला है दूध पिलाना, फाइन अर्दान लकुम। फिर अगर वो दूध पिलाएं तुम्हारे लिए, तो अगर वो औरतें जो हैं दूध पिलाएं तुम्हारे लिए, फातू हुन्ना उजूरहुन, तो दो उनको उनकी उजरत। यहां से हमें क्या बात पता चलती है? पहली बात तो ये पता चलती है कि बच्चा जो है ना वो बाप का है, इसीलिए तो है कि दूध जो पिलाना है तो उसकी जिम्मेदारी मर्द की है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि माएं अगर तुम्हारे लिए दूध पिलाएं, क्योंकि कानूनी तौर पर जो है वो बच्चा बाप का होता है, मां का नहीं होता, क्योंकि अगर मां का बच्चा हो तो उजरत लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गो के खिदमत तो दोनों की करनी है, लेकिन आपको पता है ना नसब विरासत ये सारी चीजें जिम्मेदारी भी बाप ही की बनती है ना औलाद के लिए। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर वो तुम्हारे लिए दूध पिलाएं, फातू हुन्ना उजूरा हुन्ना, तो बस उनको उनकी उजरत दो। अब ये जो उजरत है, उजरत औरत का हक है, हत्ता के मां का भी हक है कि वही मां जिसने बच्चे को जन्म दिया है, अब चूंकि तलाक हो रही है अब उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो दूध पिलाए, लेकिन शौहर ये कहता है कि अच्छा चलो यही दूध पिलाए क्योंकि बच्चे के लिए भी उसी में सहूलत है, तो फिर इसी तरह माँ भी जो है वो दूध पिलाने के की उजरत मांग सकती है, जैसे कि कोई और दूध पिलाए, कोई और दाई जो है वो दूध पिलाए। अच्छा, लेकिन इस मामले को कैसे हल करना है? वअतमिरु बैनकुम बिमारूफ, और मशवरा करो। वअतमिरु, हमजा मीम रा अमर, हुक्म काम हुक्म देना के लिए भी आता है, और एतमरा का मतलब होता है मशवरा करना, और एतमार के मानी होते हैं बहम मशवरा करना, क्योंकि मशवरा इंसान अकेला नहीं करता, कुछ लोग होते हैं ना, तो बहम मशवरा करने और एक दूसरे की बात कबूल करने में क्या करो? वअतमिरु बैनकुम, आपस में मशवरा करो, और मशवरे का तरीका क्या हो? बिमारूफ। और मशवरा किस चीज पर करना है? दूध के पिलाने पर। इससे हमें मशवरे की अहमियत का पता चलता है कि आप देखें कि मियां बीवी में बनी नहीं है, तलाक हो गई है, उसके बाद वो जो बच्चा पैदा हुआ है, वो जो नन्ही जान है, उसके मामले में अल्लाह से डरते हुए जो है वो मशवरा करके फैसला किया जाए। और फिर वो जो मारूफ है, इसके अंदर दो बातें पाई जाती हैं, एक तो ये कि मर्द के मयारे जिंदगी के मुताबिक, अब ये नहीं कि औरत इतना मुतालबा कर ले दूध पिलाने का कि चूंकि मैं माँ हूं और मर्द मजबूरन मुझे दे देगा क्योंकि बच्चा मेरे पास खुश रहेगा, तो इतना मुतालबा करे जो मर्द की हैसियत ही ना हो, और या फिर ये कि माँ कमजोर है और बीमार है और वो दूध पिला ही नहीं सकती तो मर्द फिर भी उसको ही तंग करे। तो बहरहाल ऐसे में फिर मारूफ उर्फ के मुताबिक क्या है कि फिर किसी और से भी पिलाया जा सकता है। तो बहरहाल दोनों जो हैं ये मशवरे से बात तय कर ले। वाइन तासर तुम, और अगर तुम जिद करोगे, तअस्सुम का रूट क्या है? आइन सीन रा, उसर से ही है ना, इन माल उसरी युसरा। वह इन तासर तुम, और अगर तुम जो है वो क्या करोगे, एक दूसरे पर तुमने तंगी की, एक दूसरे को तुमने सताया, तुमने जिद की, इसके मानी क्या है कि अब जो है अब तलाक हो चुकी है और मियां बीवी दोनों के अंदर कोई दिलों में कुदूरतें नफरतें थी तो तलाक हुई है ना, लेकिन बच्चे की तरबियत जो है वो इतना अहम मामला है कि अब ऐसा ना हो कि बाप जो है वो मां को सताए, अब बच्चे को दे नहीं रहा, बच्चा नजरों से गायब कर दिया है और मां तरसती है, बेशक वो दूध नहीं पिला रही क्योंकि दूध कोई और पिला रहा है, लेकिन मां उदास होती है, वो मिलना चाहती है और बच्चा भी मां के लिए रोता है, छोटा सा मासूम बच्चा कह कुछ नहीं सकता। तो अब उसमें ये कि बाप जो है ना वो मां को मिलने ना दे कि बच्चा मां से मिले, और या फिर मां जो है ना बच्चा उसके पास है और वो बाप को मिलने ना दे कि उसने अपनी जिम्मेदारी को उठाया नहीं है तो मां बहुत ज्यादा खर्चे का मुतालबा करे, या फिर ये कि वो कहे कि अच्छा अब मैं मिलने ही नहीं दूंगी ना, और वो दूर कहीं ऐसी जगह चली जाए कि बच्चा जो है वो बाप की शफकत से महरूम हो जाए। इससे ये बात पता चलती है कि बच्चा जो है ना मां और बाप दोनों की जिम्मेदारी है, तरबियत करना, शफकत देना, मोहब्बत देना। तो यही बात कही जा रही है, वइन तअसर तुम, और अगर तुम आपस में एक दूसरे को तंग करोगे तो क्या करना चाहिए, फिर जो है वो जब मशवरे से एक बात तय हो गई है कि दूध कौन पिलाएगा, किससे पिलवाया जाएगा, क्या चीज जो है वो करनी है, अब आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। फसतुर्दिउ लहू उखरा, फसतुर्दिउ बस दूध पिलाएगी उसको, उखरा कोई दूसरी। इसके मानी क्या है, इसके मानी ये है कि जब ये बात तय हो गई कि अब वो मां तो दूध नहीं पिला रही, क्योंकि हो सकता है मां ने ज्यादा दूध पिलाने की उजरत का मुतालबा किया था या उसकी सेहत खराब थी, वो दूध नहीं पिला रही, मशवरे से तय हो गया कि फलां औरत इसको दूध पिलाएगी, तो अब क्या किया जाएगा, लियुनफिक दूसाते मिन साते वमन कुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहू फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह। अब कहा जा रहा है कि जब बच्चे को कोई और औरत दूध पिलाएगी तो उस वक्त जो है वो क्या करना चाहिए कि खुशहाल आदमी अपनी खुशहाली के मुताबिक नफका दे, तो लियुनफिक दूसाते मिन साते, यहां पे जो है ना खर्च का मयार बताया जा रहा है ये आयत नंबर 7 में कि जो खर्च किया जाएगा तो उसका अंदाज जो है और उसका तौर तरीका जो है वो क्या होगा, और ये जो है ना कि वुसत वाला अपनी वुसत के मुताबिक और जो गरीब है वो अपनी हैसियत के मुताबिक, यहाँ पे अब ये किस पर खर्च करने की बात है, बच्चे पर, अब बच्चे की बात हो रही है, बच्चे के मामले में मशवरा है, बच्चे के मामले में उजरत देनी है और बच्चे की तरबियत का ख्याल रखना है, और अब बच्चे के बारे में कहा जा रहा है के लिए यूनफिक चाहिए कि वो खर्च करे, जू सात इन वुस्सत वाला, सा के मानी क्या होते हैं, वुस्सत है ना, तो वुस्सत का रूट क्या है, मौसीन आइन, तो वुस्सत वाला जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करेगा, मिन साते अपनी वुस्सत के मुताबिक, वमन कुदिरा और जो तंग किया गया, जिसको नपा तुला दिया गया, अलेही उस पर रिस्क, उसका रिस्क, फल यूनफिक मिम्मा आताहुल्लाह, फिर चाहिए कि वो खर्च करे उससे जो कि दिया उसको अल्लाह ताला ने। यहां पे ये बात बताई जा रही है कि गरीब आदमी जो है वो उतना ही खर्च करेगा जितना कि अल्लाह ने उसको दिया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला, नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी शख्स को, इल्ला मा आताहा, मगर वो जो दिया इसको, तो इसके मानी ये हैं कि ऐसा नहीं है कि जिसकी वुस्सत ही नहीं है तो वो उससे ज्यादा खर्च करने का मुतालबा हो, और या फिर ये कि वो गरीब है, और बाज़ुकात आदमी जो है ना औलाद को खर्चे की वजह से कत्ल कर देते हैं, उसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब माँ को हमल ठहर जाए तो माँ के पेट में जब बच्चा हो उसके उस दौरान बच्चे को जाया कर दिया जाए या पैदा होने के फौरन बाद जाया कर दिया जाए, किसी भी तरह, तो वो कत्ल के अंदर आता है। आप पढ़ ही चुकी हैं, वला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इयाकुम। तो अब जो है वो इस बात से भी मना कर दिया गया कि क्या करेंगे कि बच्चा जो है उसके तरबियत या उसकी खर्च करने के बारे में जो है वो एक दूसरे को जो है वो सताएं। तो गोया के ये जो आयत नंबर 7 का हिस्सा है, आयत नंबर 7 जो है, इसमें अल्लाह ताला ने खर्च का मयार भी बताया है, गरीब लोगों को इत्मीनान भी दिलाया है कि अगर आज गुर्बत है, अगर आज हालात अच्छे नहीं है, तो अगर वो अल्लाह ताला की जो हुदूद है उनका ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला जो है उनके हालात को बदल देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा अताहा सयजअलुल्लाहु बादा उसरी युसरा। करीब है कि कर दे अल्लाह उसर के बाद युसर, उसर को अल्लाह युसर में तब्दील कर देगा। तो जो गरीब लोग हैं ना उनको तसल्ली दी जा रही है, तो करीब है कि अल्लाह उसर को युसर में बदल दे। ये कब होगा? जब गरीब कनात करेगा, सब्र करेगा, तंग हाली के बावजूद अल्लाह की हुदूद को कायम करेगा। गरीब तो है लेकिन अल्लाह की खुशनुदी की खातिर ना बच्चे को तंग कर रहा है ना बच्चे की मां को तंग कर रहा है, तो अल्लाह उसके रिस्क में जो है वो बरकत दे देगा। तो यहां पर हमें टोटल जो बातें पता चली वो क्या हैं, ये जो आयत नंबर आपने 6 पढ़ी और आयत नंबर 7 पढ़ी, तो इसमें अमल के कौन से उसूल बातें हमारे सामने आते हैं? नंबर 1, औरत अपने दूध की मालिक है, और अगर वो मालिक ना होती तो उसको उजरत नहीं मिल सकती थी। नंबर 2, अगर वो बच्चा पैदा हो गया है, बच्चा पैदा होते ही अब क्या है कि वो आजाद हो गई है, क्यों? वो निकाह से बाहर आ गई है, अब बच्चे को दूध पिलाने पर वो कानूनन मजबूर नहीं है। अगर वो अभी इद्दत के अंदर होती तो मजबूर थी, है ना, लेकिन बच्चा पैदा हो गया, अब वो कानूनन मजबूर नहीं है। अब बाप चाहे तो उससे दूध पिलवा ले, अगर वो राजी हो तो उस पर वो उजरत लेने की हकदार होगी। फिर तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि बाप भी कानूनन मजबूर नहीं है कि बच्चे को मां से ही दूध पिलाए अगर वो उसको तंग करे तो। चौथी बात ये पता चली कि बच्चे के नानुफके की जिम्मेदारी बाप पर है, ना कि मां पर। और यहां पे तो बहुत रिवाज है कि तलाक जब मियां देते हैं शोहर, और फिर साथ ही 1, 2, 3, 4 जितने बच्चे होते हैं उसके साथ कहते हैं, धक्के दे के कहते हैं कि जाओ तुम जो है तुम्हारा ये घर नहीं है, और कहते हैं कि अब तुम अपने माँ बाप के घर जाओ। और अक्सर तलाक वाली लड़कियां या औरतें जो हैं 1, 2, 3 जितने बच्चे होते हैं लेकर वालदैन या भाई के दरवाजे पर बैठी होती हैं। और ये बहुत बड़ा जो है अलमिया है इस्लाम का कि इस्लाम ने औरत को जो हकूक दिए और मर्द को जो जिम्मेदारियां दी हैं उसमें जो है वो सही तरह से ये कानून नाफिज नहीं है। तो चौथी बात कि बच्चे का नुस्खा बाप पर आयद होता है, और पांचवी बात कि बच्चे को दूध पिलाने की अव्वलीन हकदार तो मां है, गो के दूसरी औरत से भी दूध पिलाने का काम लिया जा सकता है, लेकिन जब मां इनकार करे। अगर मां राजी हो और ऐसी उजरत मांगे जो बाप अदा कर सकता है तो फिर किसी दूसरी औरत से दूध ना पिलाया जाए ताकि मां के दिल को तकलीफ ना हो। और छठी बात जो है पता चलती है वो ये है कि अगर दूसरी औरत को भी वही उजरत देनी पड़े जो मां मांगती है तो मां ज्यादा हकदार है कि फिर मां से जो है वो दूध पिलवाया जाए। तो अब तक जितने भी जो हैं ये अहकामात पढ़े आयत नंबर 1 से लेकर और आयत नंबर 7 तक, तो इन अहकामात का निचोड़ क्या है? पहली बात ये पता चली कि तलाक देने की जब नौबत आए तो ये जायज नहीं है कि बीवी को तलाक के 2 कलमे कहकर फौरन घर से निकाल बाहर किया जाए, बल्कि क्या है कि तलाक देने के बाद ही अल्लाह की हुदूद शुरू हो जाती है। तलाक भी अल्लाह की हद है। यही वजह है कि तलाक के मजमून की और इसके अहकाम की अहमियत के पेशे नजर जो है वो के तलाक के अहकाम पहले नाजिल हो चुके थे, तो इसकी ताकीद और अहमियत के लिए जो कि उस जमाने के मुसलमानों में कमी बेशी थी या उनके कुछ सवालात थे, तो दोबारा जो है वो अहकाम नाजिल किए गए। और बकायदा मुतय्यन कायदे और जाब्ते बताए गए। तो क्या बात समझ आई कि जब तलाक हो जाए तो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए कायदे की पाबंदी की जाए, और ये पाबंदी हर अमीर और गरीब के लिए जरूरी है। अमीर है या गरीब, बहरहाल अल्लाह का कानून जो है उस पर चलना है, और यहां तक कि अल्लाह गुर्बत को अमारत में बदल देगा, और जो इसे हटकर चलेंगे तो अपनी जानों पर जुल्म करेंगे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगली आयात हमें क्या पैगाम देती हैं।